दूसरे संस्करण की भूमिका अनल अकासा घर किया। 21 अक्टूबर 2009 की शाम अकत कहानी प्रेम की का लोकार्पण हुआ। श्याम बेनेगल के हाथों नामवर जी की अध्यक्षता में प्रहलाद सिंह टिपानिया के गायन के साथ वागी शुक्ल और सबनम बिरमानी की टिप्पणियों के साथ कोई 3 सप्ताह बाद किताब बाजार में ढंग डौल में उपलब्ध हो पाई और 2010 की मई आते आते अशोक महेश्वरी रिप्रिंट की बात करने लगे। हिंदी में उपन्यासों तक के प्रिंटिंग साल भर के भीतर भीतर कभी कभार ही होते हैं। यहाँ इतिहास लेखन और साहित्यिक सांस्कृतिक सैद्धांतिक के सवालों पर विचार करते हुए कवि कबीर पर लिखी गई किताब का पहला संस्करण कोई 7 महीने में खत्म हो चला। यहाँ तो मैं जानता था कि इस किताब का इंतजार बहुत से लोग कर रहे हैं, लेकिन इस तरह हाथों हाथ ली जाएगी यह नहीं सोचा था। सुमन अलबत्ता कहती रहती थी कि किताब छपवाओ तो सही, देखना कैसा स्वागत होगा। वाकई मुझे चकित कर देने वाला, विनम्रता और दायित्व बोध से भर देने वाला स्वागत हुआ। बहुत से और मामलों की तरह इसमें भी सुमन की बात सही निकली। पुनर्मुद्रण की बात चली तो लगा कि रीप्रिंट का दूसरा संस्करण ही बन गया। किताब छपने के बाद से जो टीका टिप्पणी सुनने को पढ़ने को मिली उस पर कुछ अपनी भी कह लूं। प्रकाशित टिप्पणियों से लेकर अनौपचारिक बातचीत तक में बहुत सी विचारणीय बातें सामने आई हैं। कुछ मित्रों के लेख प्रकाशित हो चुके हैं, कुछ ने प्रकाशन के लिए भेजे गए लेखों की कॉपियां मुझे भी उपलब्ध करा दी। कुछ ने वे बात बता दी जो अकत कहानी प्रेम के पढ़कर मन में आती रहीं और जिन्हें वे प्रकाशित करने वाले हैं। इन सभी मित्रों की का आभारी हूँ। इतनी सारी प्रतिक्रियाओं, जिनमें से सभी सुहावनी ही सुहावनी नहीं है, से जाहिर है कि किताब ने हिंदी जगत में और उसके बाहर भी कुछ विचारोत्तेजना तो उत्पन्न की है। श्री अशोक वाजपेयी ने दैनिक जनसत्ता में अपने कालम कभी कभार 6 दिसंबर 2009 में किताब को हमारे समय के लिए कबीर का पुनराविष्कार करने का श्रेय दिया। देशज आधुनिकता की बात को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हुए लिखा, ऐसी आधुनिकता को गढ़ने में देसी भाषाओं की भूमिका और लोक जीवन और व्यवहार की केंद्रीय भूमिका का ऐसा विशद निरूपण मेरे जाने हिंदी में तो क्या अन्यत्र भी इससे पहले शायद ही हुआ है। यह सुझाव भी दिया कि अपने सांस्कृतिक विकास, कबीर की नई पहचान और देशज आधुनिकता जैसे स्थगित मुद्दों पर इस पुस्तक के बहाने हिंदी के प्रमुख केंद्रों में एक सार्थक बहस शुरू हो सकती है। एकत्र की ओर से गोष्ठी दिल्ली में 29 नवंबर को ही हो चुकी थी। कुछ और भी चर्चाएं आयोजित हुईं। 13 फरवरी 2010 को अमन ट्रस्ट और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी के सहयोग से राजा राम भादु और अन्य मित्रों के संस्था समांतर संस्कृति मंच द्वारा जयपुर में आयोजित गोष्ठी में 19 से 20 मार्च को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में दिए गए व्याख्यानों में और 20 से 21 मई को रायपुर छत्तीसगढ़ संस्कृति मंच द्वारा आयोजित चर्चा में अपनी लिखी किताब की तारीफें सुनने का, महत्वपूर्ण प्रश्नों से टकराने का सुख मिला। बनारस में सर्वश्री अवधेश प्रधान, चौथी राम यादव, कमलशील, राजकुमार, संजय द्वारा की गई विचारोत्तेजक टिप्पणियां से लाभान्वित होने का सुख मिला। औपचारिक अनौपचारिक चर्चाओं के जरिए ज्यादा बड़ा सुख मिला यह महसूस करने का कि हिंदी का 72 पाठक समाज और बौद्धिक जगत संस्कृति और इतिहासों के स्थगित प्रश्नों से जूझना चाहता है। कवि कबीर और उनके समय के साथ किए गए संवाद का स्वागत करना चाहता है। मेरी इच्छा दूसरे संस्करण की इस भूमिका को उपरोक्त संवाद में अपनी हिस्सेदारी का रूप देने की है। एकत्र की गोष्ठी में 29 नवंबर 2009 को सुश्री अर्चना वर्मा ने पर्चा पढ़ा था जो कथा देश जनवरी 2010 में पुरुषोत्तम के प्रेम की अकत कहानी शीर्षक से छपा। बहुत सटीक शब्द अर्चना जी ने सारे आयास को किताब सचमुच कबीर के साथ ही नहीं, प्रेम के साथ भी मेरे संवाद की कहानी है। कहानी जो अकत तो है ही, सतत भी है। युवा दलित लेखक अंबेडकरवादी पत्रिका अपेक्षा के उपसंपादक वेद प्रकाशक ने किताब के शीघ्र प्रकाश से समीक्षा में प्रेम के प्रसंग में बहुत ही मार्मिक बात कही कि जब हम किसी को प्रेम करते हैं तो उसे इस कदर अपने अनुसार ढाल लेना चाहते हैं कि उसकी अपनी इच्छाओं का कोई महत्व नहीं बचता, और जब किसी से नफरत करते हैं तो उसकी एक एक इच्छा और जरूरत कि ऐसी गहन जानकारी जुटाते हैं कि जो अपने सबसे प्रिय के बारे में भी नहीं जानते। ऐसी खोजी नफरत का तो मुझे कोई तजुर्बा नहीं, लेकिन प्रिय की इच्छाओं को जानने अनजाने महत्वहीन बना देने वाला प्रेम की विडंबना की तो मैंने ऐन निजी अनुभव से जानता हूँ। इसलिए प्रेम को केवल संवेदना की बजाय संज्ञानात्मक कर्म में बदलने की साधना करते कबीर से ऐसा सतत संवाद अनुभव करता हूँ। इसलिए अकथ कहानी प्रेम की में ऐसा कुछ आ गया है कि कथाकार मित्र अखिलेश को यह अपने को खोजती किताब लगती है। यह खोज कहाँ और कब विराम लेगी कौन जाने। फिलहाल तो संवाद चल ही रहा है। पहले अध्याय में कबीर और उनके अपरंपार परसोत्तम के बीच होने वाली गोष्ठी की कल्पना करते हुए मैंने लिखा। कबीर ने कहा होगा कि अपने राम से कौन जाने, पीछे पीछे फिरने वाले राम ने ही कबीर से कहा हो, प्रेम और विवेक इन दो शक्तियों के रूप में आप मेरे भीतर विद्यमान हैं। घोर बिगुचन कंफ्यूजन के अकेले पलों में जोर से आंखें मीच कर आपका नाम लेता हूँ अथवा लेती हूँ और बस सारा बिगुचन बिलाया जाता है। प्रेम और विवेक के दीपक बाहर भीतर उजियारा करते हैं। अकथ कहानी प्रेम की पर जो चर्चाएं हुई उन पर टिप्पणी करने के बहाने मेरा इरादा विभिन्न प्रसंगों में उठाए गए सवालों के बारे में व्यापक सहचिंतन से हिस्सा लेने का है। उम्मीद है कि प्रेम और विवेक के दीपक को उजियारा बिगुचन के अंधकार को कुछ कम तो करेगा ही। लेकिन सबसे पहले तो आभार उन सभी लेखकों, विद्वानों और मित्रों का, पाठकों का, मेरे छात्रों का, छात्राओं का, नौजवान दोस्तों का, जिनसे कुछ ने लेखों के जरिए, कुछ ने फोन करके, कुछ ने एसएमएस के जरिए, कुछ ने प्रत्यक्ष बातचीत में किताब के बारे में उत्साहवर्धक बातें कही। नामवर जी ने लोकार्पण से कहा था कि पुरुषोत्तम को हजारी प्रसाद द्विवेदी सम्मान मिला है, लेकिन उनकी किताब का प्रस्थान पंडित जी की किताब के प्रस्थान से सर्वथा भिन्न है। सैकड़ों किताबें कबीर पर लिखी हैं, लेकिन मुझ में कोई पूछे तो दो ही किताबों का नाम लूंगा, पंडित जी की कबीर और पुरुषोत्तम की अकथ कहानी प्रेम की। यह वाक्य हिंदी और हिंदीतर पाठकों के बीच खासा प्रसिद्ध और चर्चित हुआ। कुछ मित्रों को इस कथन पर घोर आपत्ति भी हुई। प्रशंसाओं के साथ घोर अघोर आपत्तियों और निंदाओं का भी स्वागत तो करना ही होगा। अपने लिए संतोष बल्कि गर्व की बात यह है कि नामवर जी ने पुस्तक को इतना महत्वपूर्ण माना कि भिन्न प्रस्थान से उनका आशय मुक्ता भक्ति को भागीदारी के रूप में परिभाषित करने और कबीर के कवित्व पर दिए गए बल से था। दूरदर्शन के आज सवेरे कार्यक्रम में 30 जनवरी 2002 को नामवर जी ने पुस्तक को कबीर का महाआख्यान बताते हुए कबीर के कवित्व के रेखांकन को अकथ कहानी प्रेम की किस सबसे बड़ी उस स्थापना और मुख कस्तूरी महमई को सबसे महत्वपूर्ण अध्याय माना। कबीर के महत्वपूर्ण अध्येताओं को याद करते हुए कहा, पुरुषोत्तम ने ही कबीर को पहली बार कवि रूप में स्थापित किया। अब तक वे धर्मगुरु और उपदेशक के रूप में देखे जाते हैं। भक्ति को भागीदारी के रूप में देखने को भी नामवर जी ने सर्वथा नई व्याख्या मानते हुए कहा कि पुस्तक बताती है कि भक्त और भगवान के बीच संबंध बराबरी का है, बड़े और छोटे का नहीं। एकत्र की गोष्ठी में नित्यानंद तिवारी का ही कहना था कि कबीर को मानने का संकोच तोड़ते हैं पुरुषोत्तम। भक्ति साहित्य के युवा अध्येता अंजनी श्रीवास्तव ने भी अपने शीघ्र प्रकाशित समीक्षा लेख में स्वीकार किया है कि इस किताब को पढ़ने के पहले उन्हें कबीर कभी बहुत बड़े कवि प्रतीत नहीं हुए थे। लोकार्पण कार्यक्रम में श्री वागीश शुक्ल ने कहा था, किताब के हर पैरा पर कुछ न कुछ कहा जा सकता है। 450 पेज की किताब कोई 60 पृष्ठ का अत्यंत विचारोत्तेजक और सार गर्भित समीक्षा लेख लिखकर उन्होंने अपने कथन को प्रमाणित भी किया। वागीश जी का आभारी विचारोत्तेजक टिप्पणियों के अलावा इस बात के लिए भी कि इस विस्तृत समीक्षा में उन्होंने सब प्राण बताया कि मुगल जी भारत की शब्द संपदा में मुगल राज कायम होने के पहले मौजूद था और तो बंदूक भी। यानी इन शब्दों के प्रयोग के आधार पर कबीर के कुछ पदों को परवर्ती इसलिए अप्रमाणिक मानना व्यर्थ है। इस बात पे मेरे द्वारा प्रस्तावित पाठ निर्धारण विधि को और भी बल प्राप्त होता है। आभारी हूँ श्याम बेनेगल का, जिन्होंने किताब को सांस्कृतिक समीक्षा का महत्वपूर्ण प्रयत्न और कबीर का अभूतपूर्व आख्यान निरूपित किया। भक्ति माने भागीदारी के साथ ही उन्होंने मोहित किया धर्मेतर आध्यात्मिक की धारणा और कबीर की संवेदना में सामाजिक आध्यात्मिक भीतर बाहर के पर्यावरण की निरंतरता के रेखांकन ने। 1986 में चली आ रही मित्रता को याद करते हुए श्याम ने अपने मित्र को बधाई दी और उसके किताब में इतने महत्वपूर्ण विषयों को समाहित करने का असाधारण काम कर दिखाया है। वे लोकार्पण के दिन से लेकर आज तक दबाव बनाए हुए हैं कि किताब को अन्य भारतीय भाषाओं में और अंग्रेजी में जल्दी से जल्दी प्रकाशित किया जाए। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, सुश्री अर्चना वर्मा, श्री प्रभात त्रिपाठी, हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी के भूतपूर्व प्रोफेसर सुश्री मोनिका हार्स्टमान, लंदन विश्वविद्यालय की फ्रेंचेस्का ओरसिनी को किताब भक्ति अध्ययन में पैराडाइम शिफ्ट लाने वाली लगी। प्रभात जी का तो कहना है कि डिक्टेटर होता तो इस किताब को कंपलसरी रीडिंग घोषित कर देता। उन्होंने किताब अब तक पढ़ी सर्वश्रेष्ठ किताबों में एक लगती है। मोनिका जी ने शब्दों में कि किताब भारत की पहली आधुनिकता और औपनिवेशिकता के दबाव से मुक्त करने का अनुष्ठान है। फ्रांचेस्का के अनुसार किताब अपने ढंग से यूरोप को प्रोविंसलाइज करती है। एकत्र की गोष्ठी में मदन सोनी ने पुस्तक की पठनीयता को सराहते हुए कहा, इसकी मूल्य मान्यता से सहमति प्रकट की। जिसे हम कबीर का समय करके जानते हैं वह सचमुच उनका समय नहीं बल्कि उस समय की औपनिवेशिक निर्मित है। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी के अनुसार तुलसी के प्रति लेखक के विचार बहुत सख्त हैं और यह भी कि पुरुषोत्तम ने कबीर के काव्य विश्लेषण में उपनिवेशवादी आधुनिकता के आतंक से मुक्ति का जैसी तीव्र जरूरत महसूस की है वैसी न तो मार्क्सवादी दृष्टि से मुक्ति की और न ही कबीर के राजनीतिक उपयोग से मुक्ति की, जबकि ये दोनों ही भक्ति काव्य और कबीर के ही नहीं साहित्य मात्र के मूल्यांकन में खतरनाक तोड़फोड़ करते रहते हैं और कर रहे हैं। बात सचमुच विचारणीय है, मार्क्सवाद के प्रसंग में भी और अन्य राजनीतिक दृष्टियों के प्रसंग में भी। नया पथ के जनवरी मार्च 2010 के अंक में श्री मुरली मनोहर प्रसाद सिंह ने किताब को हिंदी की आलोचनात्मक साहित्य और साहित्य के इतिहास दृष्टि के बंद कपाट पर एक नई दस्तक, सच पूछिए तो गंभीर प्रहार कहा। डॉक्टर राजकुमार ने कथादेश के अगस्त 2010 के अंक में प्रकाशित समीक्षा में लिखा कि भक्ति के लोकवृत्त के बहाने पुरुषोत्तम अग्रवाल ने समूचे भक्ति आंदोलन के अध्ययन के लिए एक नई सैद्धांतिक तैयार कर दी है। कबीर ही नहीं सारे भक्तिकालीन रचनाकारों के अध्ययन के लिए यह सैद्धांतिक एक नया प्रस्थान निर्मित करती है। इस अंक में ब्रजेश का कहना है कि यह किताब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के कबीर के बाद कबीर पर ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण किताब नहीं मानी जाएगी बल्कि इसे सांस्कृतिक आलोचना या सभ्यता समीक्षा की दृष्टि से भक्ति काल पर एक नई विचारोत्तेजक कीर्ति के रूप में लोग पढ़ेंगे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग से संबद्ध और वैकल्पिक आधुनिकता पर एक पूरे प्रोजेक्ट के जुड़े मित्र संजय का कहना है कि भक्ति के लोकवृत्त की अवधारणा विमर्श के इतिहास में सर्वथा अभूतपूर्ण है। मौखिक इतिहास की विशेषज्ञ युवा इतिहासकार मोनिका दत्ता के अनुसार मार्के की बात यह है कि इतिहास और साहित्य, इतिहास और स्मृति के बीच के सपाट विरोध बाइनरी को चुनौती देने वाली यह महत्वपूर्ण किताब किसी इतिहासकार द्वारा नहीं साहित्य के अध्येता द्वारा लिखी गई है। मोनिका को यह चिंता भी है कि औपनिवेश ज्ञान कांड की बात उस ज्ञानकांड के अंतर्विधियों और अंतर्विरोधी और अंतर छवियों की सपाट उपेक्षा के रूप में न पढ़ लिया जाए। रामानंदियों के ब्राह्मणीकरण में जयपुर नरेश जयसिंह की भूमिका का विवरण पढ़ के रविंद्र त्रिपाठी कथादेश जुलाई 2010 ने यह दिलचस्प और गौरतलब प्रयास किया कि अगज जयसिंह ने रामानंदियों पर दबाव न बनाया होता और रामानुजियों का पक्ष न लिया होता तो उत्तर भारत का धार्मिक सांस्कृतिक वातावरण कुछ और ही होता। बल्गारिया के सोफिया विश्वविद्यालय की प्रोफेसर गलीना सोकोलोवा को पुस्तक कबीर अध्ययन की सर्वथा नई पद्धति खोलने वाली और यूरोपीय अध्ययन की उचित आलोचना करने वाली लगी। हालांकि पुस्तक की पॉलीमिकल शैली उन्हें नहीं सुहाई, स्वर्गीय शार्लोट वादिवेल की आलोचना उन्हें विनांद कैलवर्थ और विनय धारवाड़कर के साथ रखते हुए करना भी गलीना को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि जिस समय यूरोप के भारतविद संस्कृतेतर स्रोतों पर जरा भी ध्यान नहीं देते थे, वादिवेल जैसे थोड़े से अध्येताओं ने ही उस समय भारत विषय अध्ययन के लिए देशभाषा स्रोतों पर ध्यान दिया था। 13 फरवरी 2010 को जयपुर में आयोजित गोष्ठी में डॉ. कृष्णदत्त पॉलीवाल ने कहा था कि अब रामानंद और कबीर के संबंधों पर छाया रहस्य का कुहासा छट गया है। राजा राम भादु का कहना था कि इस पुस्तक का सांस्कृतिक चिंतन हमारे समय की चुनौतियों को सीधे संबोधित करता है। गिरिराज किराडू ने कहा, यह पुस्तक हिंदी आलोचना की अकादमिक शुष्कता का अतिक्रमण करती है और प्रकृति में संरचना में खुलेपन और सृजनात्मक सांस्कृतिक विमर्श का प्रस्थान बिंदु बनती है। कवि अनामिका के अनुसार कबीर का स्वागत सहज कवि बेबाक इंसान के रूप में जैसा होना चाहिए उसके सजग प्रतिमान रचती है। अकत कहानी प्रेम की बेबाक इंसान के रूप में है। कहानीकार बलराम ने अनेक रूढ़ियों और भ्रांत धारणाओं का निराकरण करते के कारण लेखक को साधुवाद का पात्र माना है। युवा फिल्मकार और समाजकर्मी प्रकाश राय के अनुसार किताब साहित्य के विद्यार्थियों, अनुरागियों एवं सामाजिक विज्ञान और सांस्कृतिक अध्ययन से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। पत्रकार मित्र गीता श्री ने घोषित रूप में नारी संवेदना विषयक देही अध्याय पढ़कर पूरी पुस्तक की समीक्षा कर दी और आदरणीय संपादक मित्र राजेंद्र यादव ने छाप भी दी। गीता श्री का कहना है कि नारी निंदा के प्रसंग में पुरुषोत्तम जी कबीर को बचाते हुए ही नजर आते हैं। पूरी किताब तो क्या, उपरोक्त समीक्षा जिन दो ही अध्यायों 8 और 9 को पढ़कर लिख दी गई, उन्हीं को ध्यान में से पढ़ने वाले पाठक को समझ में आ जाएगा कि कमी कहाँ है, किताब में या समीक्षा में। कबीर की संवेदना की फांक पर गंभीर टिप्पणी की है सुश्री अर्चना वर्मा ने। जिस पुरुष ने काम मिलावे रामको के संकल्प से अपने सबसे अधिक उद्यम अवश्य आवेग का रामोन्मुख करने का, अपने भीतर के स्त्री के अमूर्त के प्रति इस उन्मुखता को नवोदित करने का फैसला कर लिया, उसने अपनी ही जैविक प्राकृतिक उद्यमता को अपने खिलाफ चालू कर लिया। बाहर सामने खड़ी स्त्री अगर उसके भीतर के पुरुष को उसकी कामना को जगाती है तो निंदा के अलावा और कौन सा कवच उसके पास बचता है। असल में शायद उसकी संवेदना की फांक नहीं, उसके संकल्प की एकोन्मुखता ही है जो उसके भीतर की स्त्री को बाहर की दुनिया के स्त्री के विरुद्ध करती है। इस तर्क का नोटिस किताब पहले से ही ले लेती है। मेरे लिए एक विवाद मूलक सवाल नहीं, स्वभाव मूलक जिज्ञासा है कि संकल्प की एकोन्मुखता साधने के लिए स्त्री साधिकाओं को पुरुष मात्र को नरक के द्वार बताने की जरूरत क्यों नहीं पड़ती। इस जिज्ञासा का संधान जारी है, परिणाम कुछ इस किताब में आ गया है, कुछ आगे आएगा। इस प्रसंग में अपनी मूल मान्यता एक बार फिर से दोहरा दूं, जरूरत साधनात्मक स्त्रीत्व को सामाजिक स्त्री विमर्श तक ले जाने की है, जो काम कबीर का समय नहीं कर सका, जरूरी नहीं कि हमारा समय न कर सके। बहरहाल आभारी हूँ सभी मित्रों के टिप्पणियों के लिए। आभारी हूँ सांप्रदायिक राजनीति के विरुद्ध संघर्ष की साथियों तिस्ता सीतलवाड और जावेद आनंद का, जिन्होंने किताब के कुछ हिस्सों का अंग्रेजी अनुवाद कम्युनलिज्म कॉम्बैक्ट जनवरी 2010 में प्रकाशित किया। मैन ऑफ द मोमेंट शीर्षक से पूरा संपादकीय लिखकर नोट किया कि यह पुस्तक केवल कबीर या अन्य संतों की कहानी नहीं है, बल्कि अब सबकी हमारे सामने की कहानी है और हमारे समय की, और वह हमारे समाज के संदर्भों से गहरा जुड़ाव रखती है। इस पुस्तक में कबीर के महाने पुरुषोत्तम ने हम अंग्रेजी बोलने बरतने वाले के बारे में जो कहा वह निहायत ही परेशान करने वाला है। कृतज्ञ हूँ पारख मार्ग के आचार्य अभिलाष दास जी का, उन्होंने स्वाभाविक मतभेदों के बावजूद मुझे लिखे स्नेहिल पत्र में किताब को अगली पीढ़ी के लेखकों को नई प्रेरणा और दृश्य देने वाली बताया। इस तरह के स्वाभाविक मतभेद के साथ उतना ही स्वाभाविक स्नेह बनाए रखने के लिए आभारी हूँ वर्तमान रामानंदाचार्य राम नरेशाचार्य जी का। सितंबर 2007 में नेशनल बुक ट्रस्ट से कबीर साखी और सबद का प्रकाशन, कबीर के साथ पिछले 3 दशकों से चले आ रहे संवाद और मुखामुखम के पुस्तक रूप में प्रकाशित होने का श्रीगणेश था। इसके पहले मामला लेखों और व्याख्यानों तक ही सीमित था। यह श्री गणेश संभव हुआ आदरणीय प्रोफेसर बिपन चंद्र के कारण। उनके प्रति आदर भाव को एक बार फिर रेखांकित करता हूँ। मुझे बीए में हिंदी पढ़ाने वाली मैम शशि प्रभा पांडे दीक्षित को प्रणाम करता हूँ, जिनके लिए किताब का प्रकाशन एक बहुत ही निजी गौरव और संतोष का विषय बना। आभारी हूँ राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में हिंदी के प्रोफेसर भक्ति साहित्य के गंभीर अध्येता नंद किशोर पांडे का, जिनसे किताब के छपने से पहले की चर्चाएं होती रहीं और होती रहेंगी। आभारी हूँ उस्तादे मोहतरम अलसज परवेज साहब का, जिन्होंने अपने संपादन में निकलने वाली पत्रिका उर्दू अदब में इस किताब के कुछ हिस्से प्रकाशित किए। यह सब लिखते हुए स्वर्गीय कवि आदरणीय मित्र सोमदत्त बार बार याद आते हैं। वे लगातार चेताते रहते थे, गोष्ठी लूट लेने के मादक सुख के मोह में वांछित परंपरा तक ही सीमित मत रहना पुरुषोत्तम। अब तो बस कल्पना ही कर सकता हूँ उस सुख की जो यह किताब देखकर सोमदत्त जी को होता। अकत कहानी प्रेम की के दूसरे संस्करण को इतनी तत्परता और सुरुचिपूर्ण ढंग से लाने के लिए मैं श्री अशोक माहेश्वरी और राजकमल प्रकाशन के साथियों का हृदय से आभारी हूँ। कवर डिजाइन में सहायता के लिए श्री ज्योतिष जोशी और फोटोग्राफ के लिए रितंभरा अग्रवाल का आभार व्यक्त करता हूँ। कुछ लोगों की शिकायत है कि अंग्रेजी राज के पहले भी भारतीय आधुनिकता की बात तो रामविलास जी बहुत पहले ही कर चुके हैं, लेकिन पुस्तक उन्हें नहीं विदेशी विद्वानों को ही उद्धृत करती है। इस सिलसिले में सबसे पहली बात तो यही है कि पुस्तक रामविलास जी का ही नहीं धर्मपाल जी का भी उल्लेख इस प्रसंग में करती है। जिन्होंने किताब ध्यान से पढ़ा ही उनका ध्यान इस ओर गया है। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी और सुश्री अर्चना वर्मा ने अपने प्रकाशित लेखों में और अंजनी श्रीवास्तव ने अपने शीघ्र प्रकाशित लेख में इस बात को लक्ष्य किया है कि, लेकिन यह भी सच है कि जैसा कि श्री वागेश शुक्ल ने अपने लेख में लीक छाणी उसमें लक्ष्य किया है रामविलास जी की, और मेरी बात तो कुछ फर्क भी है। मैं रामविलास जी की स्थापनाओं से जहाँ तक सहमत हूँ उनका संकेत मैंने पृष्ठ 50 पर कर दिया है। ब्यूरो पर बहस हो सकती है, लेकिन रामविलास जी की यह सलाह बिल्कुल ठीक है कि भारत एक जड़ अपरिवर्तनशील वर्ण व्यवस्था का देश है। यह धारणा मन से निकाल देनी चाहिए। जिन ब्यूरो डिटेल्स पर बहस हो सकती है उनका संकेत भी किताब करती है। असल में बात है भारत ही नहीं समूचे गैर यूरोप के बारे में इतिहास लेखन में प्रचलित अवधारणाओं के बाहर आने की। किताब इस दिशा में कोशिश करती है कि यह बात उन लोगों ने लक्ष्य कर भी ली है जो इतिहास लेखन में अपने क्षेत्र में चल रही चर्चाओं से वाकिफ है। जो इतिहास का अध्ययन करने के बजाय इतिहास देवता का कीर्तन करते हैं उनकी बात और है। अतीत को जानने की इच्छा बनाए रखना केवल अतीत रस का आस्वादन करने के लिए नहीं जरूरी है। गैर यूरोपीय समाजों में यह इच्छा केवल अस्मिताओं के संघर्ष तक भी सीमित नहीं रहनी चाहिए। नए सिरे से उपनिवेशित होने के लिए, गुलाम बनने के लिए जो उतावले और गर्दन उचका उचका कर देख रहे गौरवपूर्ण स्वामियों के शुभ चरण फिर से कब खुले आम गैर यूरोप को रौंदना शुरू करते हैं उनकी बात और है, लेकिन जो उपनिवेशवाद और औपनिवेशिक ज्ञानकांड की इतिहास और इतिहास लेखन में उसके योगदान को सचमुच ज्ञान लेंगे वे नव उपनिवेशवाद की संभावना और खतरों की उपेक्षा नहीं कर पाएंगे। वे ओरिएंटलिज्म का विरोध करने के लिए उसका प्रतिबिंब ऑक्सीडेंटलिज्म गढ़ने में प्रलोभन से दूर रहेंगे। विद्वानों के बीच देशी विदेशी का पांत भेद करने की जरूरत नहीं समझेंगे और नस्लवाद जातिवाद का विरोध करने के नाम पर उलट नस्लवाद जातिवाद अपना लेने से बचेंगे। भारतीय समाज के सांस्कृतिक अनुभव और स्मृति कोष को, जैसा कि इस किताब में कहा गया है, उनकी बात भी सुनते हुए जानना जरूरी है जो ना संस्कृत या फारसी बोलते हैं और ना अंग्रेजी। किसी भी समाज के अतीत और वर्तमान का मूल्यांकन केवल धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष पवित्र पोथियों के ही आधार पर नहीं, लोगों की वास्तविक चाल चलगत एवरीडे प्रैक्टिसेस जताने वाले स्रोतों को भी ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। तभी दुनिया भर के बेहतर भविष्य की कल्पना को दुनिया भर के सांस्कृतिक अनुभवों और स्मृतियों का पुख्ता आधार मिल सकेगा। दूसरे शब्दों में, जगत उद्धारक ग्रंथि ग्रस्त यूरो केंद्रित यूनिवर्सलिज्म के स्थान पर सच्चा विभिन्न परंपरा और आधुनिकताओं के बीच संवाद पर आधारित यूनिवर्सलिज्म सैद्धांतिक विमर्श और लोकचित्त दोनों के स्थान पा सकेगा। वैसे मुझे स्वीकार करना चाहिए कि भारतीय आधुनिकता के प्रसंग में विदेशी विद्वानों को उद्धृत करने की एक कारण यह भी है कि रामविलास वर्मा और धर्मपाल जैसे नाम पढ़ते ही जो वीर भारत व्याकुलता चिल्लाते तलवार भांजने लगते हैं, वे इस प्रसंग में रेमंड श्वाब, आंद्रे गुदर फ्रैंक, एरिक वोल्फ और जैक गुडी के विचारों से भी वाकिफ होने का अवसर पा लें। वीरों का ध्यान पता नहीं इस ओर आ गया कि नहीं, लेकिन यह किताब भारत की ही नहीं सारे गैर यूरोप की देशज आधुनिकता की बात करती है और साथ ही यूरोप के रेनेसा के पूरे होने में भारत, चीन और दूसरे पूर्वी समाजों के निर्णायक भूमिका की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित करने का कोशिश करती है। इस कोशिश का अपना प्रस्थान बिंदु स्पष्ट है, जिसे यहाँ फिर से दोहराने में हर्ज नहीं। कोई आधुनिकता परंपरा बोध के बिना संभव नहीं होती और हर परंपरा में अपनी आधुनिकता की संभावना नहीं होती। उपनिवेशवाद की विशिष्ट ऐतिहासिक स्थिति ने भारत और औपनिवेशवादी समाजों के बौद्धिक के मानस में औपनिवेशिक सत्ता और ज्ञानकांड के प्रति एक तरह के अंतर्द्वंद और उलझन का रवैया पैदा किया। वे औपनिवेशिक ज्ञानकांड से उपजे ज्ञान से टकराते जरूर थे, लेकिन उसी ज्ञानकांड की शर्तों पर उसी के द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर रहते हुए। कबीर के वंश निर्धारण और कबीर रामानंद संबंध की बहस यह स्थिति साफ दिखती है। अनेक विद्वान औपनिवेशिक ज्ञानकांड के परे जाने पर असफल प्रतीत होते हैं, लेकिन जैसा कि डेविड लोरेंजन ने जल्दी ही प्रकाशित होने वाले अपने लेख में नोट किया है, हो सकता है कि इस असफलता का मुख्य कारण औपनिवेशिक आधुनिकता की बजाय इन अध्येताओं द्वारा साक्ष्यों का ठीक से विश्लेषण न कर पाने सरीखी कमजोरियों से जुड़ा रहा हो। ऐसी कमजोरियों की और पुरुषोत्तम ने ठीक ही संकेत किया, उनके बावजूद यह तो स्वयं भी मानेंगे कि 20वीं सदी के मध्य के अनेक विद्वानों ने औपनिवेशिक स्थिति द्वारा आरोपित सीमाओं को पार करते हुए वैकल्पिक वैष्णवता की विशेषताओं को बखूबी समझा है। ऐसे विद्वानों ने पीताम्बर दत्त बर्धवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्षिति मोहन सेन और परशुराम चतुर्वेदी मुख्य हैं। औपनिवेशिक ज्ञानकांड के जरिए रचे गए या जाने अनजाने उसकी अनेक मान्यताओं को संस्कार रूप में धारण करने और इस संस्कार में संघर्ष करने के लिए नियतिबद्ध बौद्धिकों और उनके हम सरीखे उत्तराधिकारियों की उलझन एम्बीवैलेंस का संवेदनशील और विचारोत्तेजक अध्ययन इतिहासकार सुधीर चंद्र ने किया। एकत्र की गोष्ठी में उन्होंने चिंता भी प्रकट की थी कि अकत कहानी प्रेम की इस उलझन और औपनिवेशिक स्थिति द्वारा आरोपित सीमाओं को पार करने की दिशा में बौद्धिक के आत्मसंघर्ष के प्रति संवेदनशील की बजाय सपाट रवैया अपनाती दिखती है। सुधीर और डेविड की बात सिर माथे इसीलिए नहीं कि दोनों अपने बहुत अच्छे दोस्त हैं, बल्कि इसलिए कि बात बिल्कुल सच है। इतना ही कहना है कि औपनिवेशिक ज्ञानकांड द्वारा उत्पन्न की गई समस्याओं पर जोर देना चाहता था, वह शायद इतना ज्यादा हो गया कि पाठकों तक पहुंचा उन समस्याओं के प्रसंग में बौद्धिक द्वारा किए गए संघर्ष और आत्मसंघर्ष की उपेक्षा की। इस आत्मसंघर्ष और उलझन की अपेक्षा सचमुच नहीं की जा सकती। औपनिवेशिक सत्ता और ज्ञान कांड के कामों और उनकी परिणतियों के प्रति सूक्ष्म न्यूआंस्ड रवैया अपनाने की जरूरत भी इनकार नहीं किया जा सकता। जरूरत उस सत्ता द्वारा सचेत रूप में अपनाई गई नीतियों और रेल लाइन बिछाने जैसे कामों की अनिवार्य सामाजिक परिणतियों के बीच फर्क करने की है, और यह फर्क मेरे मन में एकदम स्पष्ट है। या फिर से रेखांकित करना उचित होगा कि मैं यह कदापि नहीं कह रहा हूँ कि अंग्रेजों के पहले भारत में सब भला ही भला था। उल्टे किताब की शुरुआत ही औपनिवेशिक ज्ञानकांड के कारण जन्मे दो रूखे की चर्चा होती है। पहले के अनुसार हम हर समस्या विदेशियों की देन है। दूसरे शब्दों में अपनी समस्या हल तो हम क्या करेंगे, इतनी भी सामर्थ्य परमात्मा ने भारतीयों को नहीं दी। अपने लिए कुछ समस्याएं स्वयं भी पैदा कर सके। और दूसरे के अनुसार अंग्रेजी राज के पहले भी भारतीय जनजीवन में सिवाय अत्याचारों और तर्कविहीन परंपराओं के अंधानुगम के और था क्या। इन दोनों रूखों के विपरीत मेरा निवेदन यह है कि समस्याएं थीं, लेकिन समाधान के प्रयास भी थे। अन्याय जरूर था, लेकिन उसका प्रतिवाद भी था। मूल बात यह है कि अंग्रेजी राज कायम होने के पहले के भारतीय फ्रेंच राज कायम होने के पहले के वियतनामी और स्पेनिश राज कायम होने के पहले से आजतेजक झापोतेक और माया लोग भी बुद्धि का प्रयास करना चाहते थे। भारतीय तो स्टेप क्राफ्ट और व्यापार से लेकर अमूर्त दार्शनिक चिंतन तक में बहुत आगे थे। निवेदन यह भी है कि उपनिवेशी ज्ञानकांड भारतीय समाज का निस्वार्थ भाव से वस्तुनिष्ठ अध्ययन नहीं कर रहा था। बेशक किसी भी ज्ञानकांड की तरह औपनिवेशिक ज्ञानकांड में भी अनेक स्वर थे, और ये स्वर सभी उपनिवेशकृत समाजों की परंपराओं और जीवन विधियों, वास्तविकताओं और स्मृतियों के प्रति एक से असंवेदनशील नहीं थे। रिजले के नस्लवाद के विरुद्ध साक्ष्यों और तर्क के आधार पर जाति व्यवस्था के फंक्शनल पेशों पर आधारित रूप को रेखांकित करने वाले विलियम क्रूप भी ब्रिटिश अफसर ही थे। क्रुक द्वारा जुटाई गई सूचनाएं और उनके निष्कर्ष किसी भी गंभीर इतिहासकार के लिए अपरिहार्य हैं। मैंने उनका उपयोग किया ही है, लेकिन ध्यान इस बात पर भी देना होगा कि क्रुक जैसे लोग भी एथ्रोप्रोमेटिक अध्ययनों के लिए प्रशासन द्वारा जुटाए गए नेटिव सैंपलों की खोपड़ियों और नाकों के नाप लिए करते थे। इसी प्रसंग में मैंने लिखा है कि जाति को नस्लधारित मानने वालों हो या पेशाधारित, आधुनिक यूरोपीय अध्येताओं को ऐसे वैज्ञानिक अध्ययनों के लिए मनुष्य के नर या मादा सैंपल या तो उपनिवेश में सुलभ हो सकते हैं या फिर नाजी कंस्ट्रक्शन कैंपों में। फिर से कहूँ, बात केवल भारत तक सीमित नहीं है। दुनिया में इतिहास में अश्वेत दासों का पहला सफल विरोध 18वीं सदी के अंत में हाइती से हुआ था, और 1 जनवरी 1804 को हाइती ने स्वयं को फ्रेंच औपनिवेशिक सत्ता में स्वतंत्र घोषित कर दिया। इस स्वतंत्र संग्राम का अद्भुत रूप अंतर्दृष्टि संपन्न और प्रामाणिक इतिहास 20वीं सदी के प्रख्यात अश्वेत मार्क्सवादी बौद्धिक C.L.R. जेम्स ने 1938 में लिखा था। द ब्लैक जैकोबियंस नामक यह ग्रंथ हाइती की क्रांति इतिहास के रूप में ही नहीं, मार्क्सवादी इतिहास दृष्टि के सैद्धांतिक और व्यवहारिक विनियोग की दृष्टि से भी क्लासिक माना जाता है। द ब्लैक जैकोबियंस के पहले अध्याय द प्रॉपर्टी का एक उदाहरण उन लोगों की सेवा में समर्पित है जिन्हें लगता है कि यूरोपीय उपनिवेशवाद और उससे जुड़े ज्ञानकांड न तो केवल एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका जैसे असभ्य समाज में चल रहे अत्याचारों का दस्तावेजीकरण किया था, और आजकल कुछ विद्वान उन उद्धारकों और ज्ञान साधकों के प्रति कृतज्ञ होने के बजाय इन्हीं पर उस अत्याचार को रचना करने के आरोप मढ़ने लगे हैं। दास व्यापार के प्रसंग में C.L.R. जेम्स लिखते हैं, उस समय के प्रोपेगेंडिस्ट बताते हैं कि दास व्यापार कितना भी क्रूर क्यों न प्रतीत हो, दास मानकर अमेरिका ले जाया गया अफ्रीकी अपनी खुद की अफ्रीकी सभ्यता की तुलना में अमेरिका पहुंचकर ज्यादा खुशी होता था। और हमारा युग भी प्रोपेगेंडा का युग है। अपने पूर्वजों की तुलना में हम अधिक व्यवस्थित और संगठित ढंग से प्रोपेगेंडा करते हैं, लेकिन झूठ वे भी उतने ही धाकड़ ढंग से बोलते थे। 16वीं सदी में मध्य अफ्रीका सुख शांति और सभ्यता का क्षेत्र था। महाद्वीप के एक सिरे से दूसरे सिरे तक व्यापारी बिना किसी खौफ या खतरे के यात्राएं करते थे। जिन कबीलाई युद्धों से अफ्रीका को मुक्ति दिलाने का दावा यूरोपियन लुटेरे करते थे, वे कबीलाई युद्ध छोटी मोटी झड़पों से ज्यादा कुछ नहीं हुआ करते थे। आधा दर्जन लोग जिसमें मारे जाएं, ऐसी झड़प को ही विकट संग्राम मान लिया जाता था। दास व्यापार की विपदा जिस समाज के सर टूटी, उसमें किसानों की दशा कई मायनों में उस समय की यूरोपीय भूदासों से कई गुना बेहतर थी। कबीलाई जीवन का तोड़ा गया और लाखों अफ्रीकियों को एक दूसरे से भिड़ा दिया गया। उपजों के लगातार विनाश के फलस्वरूप लाखों फलस्वरूप नरभक्षण तक करने को बाध्य हुए। अपहृत स्त्रियां पत्नी से रखल बनने की विवश हो गईं। कबीलों को तो यूं दास पकड़ कर देने होते थे या स्वयं दासता के लिए तैयार रहना होता था। हिंसा और क्रूरता अस्तित्व की शर्त बन गई थी और हिंसा और क्रूरता का ही अस्तित्व बाकी रहा। भारत के प्रसंग में औपनिवेशिक सत्ता और ज्ञानकांड की प्रगतिशील की कुछ चर्चा तो पुस्तक में की गई है। औपनिवेशिक सत्ता और ज्ञानकांड की प्रगतिशील भूमिका के प्रति कृतज्ञता के आंसुओं से जिनकी आंखें भर भर आती हैं, वे दी ब्लैक जैकोबियंस भी एक बार देख लें। साथ ही अकत कहानी में पूछे गए इस सवाल का उत्तर फिर से खोजे। 19वीं सदी की आखिरी चौथाई में अकाल के कारण काल के ग्रास में समा जाने वाले हमारे इन 2.5-3 करोड़ अभागे पूर्वजों में से कितने दलित, पिछड़े और आदिवासी रहे होंगे और कितने सवर्ण या ब्राह्मणवादी। ये 2.5-3 करोड़ उस समय के भारत की आबादी के कितने प्रतिशत रहे होंगे, इस पर ध्यान दें तो शायद यह भी समझ में आ जाएगा कि माइक डेविस जैसे अध्येता परम प्रगतिशील अंग्रेजी राज पर जातिनाश हेलोकास्ट जैसा गंभीर आरोप क्यों लगा रहे हैं। अफ्रीका या भारत जैसे विस्तृत भूभागों के प्रसंग में यह भी याद रखना चाहिए कि जो चाल चलगत एवरीडे प्रैक्टिस केरल में थी, जरूरी नहीं कि वह उत्तर भारत में हो। जाति व्यवस्था का जो रूप उड़ीसा में है, जरूरी नहीं कि ऐन वैसा ही रूप गुजरात में हो। मैंने लिखा ही है, दक्षिण के ब्राह्मण सभी अब्राह्मणों को शूद्र मानते हैं, उत्तर में कुछ मध्यवर्ती जातियां भी हैं और ब्राह्मणों को सामाजिक हैसियत दक्षिण महाराष्ट्र और बंगाल की तुलना में काफी कमजोर थी। औपनिवेशिक ज्ञानकांड और स्मार्ट ब्राह्मणों के सार्वत्रिका प्रेम ने मिलकर उत्तर की बहुस्तरीय और जटिल सामाजिक संरचना पर ब्राह्मण अब्राह्मण का सपाट मॉडल लागू कर दिया। वर्णाश्रम का जो मॉडल ही था और अधिकांशतः असफल ही, उसे भारतीय समाज व्यवस्था की शाश्वत सच्चाई बना दिया। स्थानीय चाल चलगत पर काबू पाने का जो काम स्मार्ट ब्राह्मण समूचे भारतीय इतिहास में कभी पूरी तरह नहीं कर पाए थे, औपनिवेशिक आधुनिकता के सहयोग से वह काफी दूर तक संभव हुआ। गनीमत यही है कि काफी दूर तक ही, पूरी तरह भी, फिर भी नहीं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों के इतिहास की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए सब धान 22 पसेरी तौलने के प्रलोभन से बचते हुए मैंने हिंदी क्षेत्र के बारे में निश्चित रूप से कहा और फिर कहता हूँ, शाश्वत ब्राह्मण वर्चस्व की तस्वीर औपनिवेशिक सत्ता के साथ ब्राह्मणों के कोलैबोरेशन के फलस्वरूप 18वीं-19वीं सदी में गढ़कर कबीर के समय पर चिपका दी गई। इसलिए जिन्हें निकोलस डक्स ऑफिशियल ब्राह्मण कहते हैं, उपनिवेशवाद के साथ उनकी जुगलबंदी के नतीजों को समझे बिना ब्राह्मणवाद को न तो समझा जा सकता है और न उसका उचित उपचार किया जा सकता है। शाश्वत ब्राह्मण वर्चस्व की फैंटेसी के बरक्स इस किताब में दिए गए तथ्य और तर्क पढ़कर बड़े बुजुर्ग मित्र नासिक से प्रकाशित मराठी दैनिक देशदूत के संस्थापक श्री देवकिशन सारडा को ब्राह्मण बनने का कारखाना या ब्राह्मण बनाने का कारखाना याद आया, जो उन्हें 40 वर्ष पहले कोलाबा मुंबई के आर्य समाज भोजनालय में चलता देखा था। सार जी का ही नहीं, अकत कहानी प्रेम की अन्य अनेक पाठकों का भी ध्यान चाल चलगत की उन वास्तविकताओं की ओर गया जिन्हें थ्योरी तक ही सीमित विद्वत्ता के घटा टोप ने धुंधला दिया। मैं इसे किताब की बहुत बड़ी सफलता मानता हूँ। आरंभिक आधुनिक काल के भारत की अन्य समस्याओं के बारे में बात करने के अलावा मैंने यह भी देखा है कि शस्त्रधारी साधु संन्यासी 20वीं सदी के राजनीतिक आंदोलनों के ही कारण नहीं पैदा हो गए, दंडियों मुंडियों के सशस्त्र संघर्षों की चर्चा भी की। बुनियादी तौर से मेरी आपत्ति उस सोच से है जो यह मान बैठी है कि अपनी भारतीय समाज में नहीं थी। भारतीय समाज सांस्कृतिक अनुभव के प्रति घोर असंवेदनशील और औपनिवेशिक सत्ता के प्रति गदगद कृतज्ञता इस सोच की पहचान है। इस सोच का एक रूप स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में टोटी बच्चा कहलाता था और इसी के कई रूप आजकल क्रांतिकारी बना धारण लिए घूमते हैं। यह आत्म घृणा औपनिवेशिक सत्ता के लिए सबसे बड़ी सहायक थी। नव उपनिवेशवाद के विभिन्न रूपों के लिए भी भारत जैसे समाजों के चित्त में संस्कार बनकर बैठी यह आत्म घृणा सबसे बड़ी सहायक है। औपनिवेशिक स्वामियों के प्रति कृतज्ञता में डूबे लोग भले ना पढ़ पाए, लेकिन अकथ कहानी प्रेम की अंग्रेजी राज के पहले के भारत में कोई समस्या देखी ना पाने और सिवाय समस्याओं के और कुछ भी नहीं देख पाने की अतियों का प्रतिवाद करने की कोशिश भी है। औपनिवेशिक आधुनिकता द्वारा पैदा की गई समस्याओं पर किताब में काफी जोर दिया गया। आधुनिकता की अवधारणा की अस्पष्टता और प्रस्तुत प्रसंग में उसके औचित्य को लेकर कुछ मित्रों ने गंभीर सवाल उठाए हैं। वागी शुक्ल और मदन सोनी को उत्तर आधुनिक सोच पर पुस्तक में यत्र तत्र किए गए कटाक्ष भी गैर जरूरी और अटपटे लग रहे हैं। वागी जी का कहना है कि मुझे आधुनिकता का कोई भी प्रयोग भारतीय संदर्भ में भ्रामक लगता है, क्योंकि यह शब्द मॉडर्निटी के अनुवाद के रूप में इस्तेमाल होता है और भारत में उस संघर्ष का सर्वथा अभाव है जिसके कारण यूरोप की आधुनिकता की ओर मुड़ना पड़ा। जिसे पुरुषोत्तम ने देशज आधुनिकता से टटोलना चाहा, वह भारत में सदा से मौजूद रही। उसे मध्यकाल से जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। व्यापार भी ईसा पूर्व में भी इतना था कि तब के रोमन सिक्के भारत में मिले और रोम के लेखक दुखी थे कि सारा धन भारत चला जा रहा है। अरबों के बीच भारत के लोहे की तलवार मुहन्नद इतनी मशहूर थी कि हजरत मोहम्मद के समकालीन कवि ने उनकी कंसीदा लिखते समय उनकी उपमा उससे दे दी। यूं व्यापार का संबंध आधुनिकता से मेरी दृष्टि में ऐसा गहरा भी नहीं है। यूरोपीय आधुनिकता की जन्म कुंडली में निकट अतीत से विच्छेद के जो ग्रह बैठे हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए वागीश जी का सवाल वाजिब है। क्या भारत में परंपरा चिंतन और संस्कृति के नैरंतर्य की ऐसी गति ऐसी मौत कभी हुई थी कि पुनर्जन्म रेनेसां की बात करनी पड़े? ठीक यही सवाल जयपुर की गोष्ठी में भी श्री नंद किशोर आचार्य ने भी उठाया। 19 मार्च 2010 को बनारस वाले कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए चीनी इतिहास के अध्येता प्रोफेसर कमलशील का कहना था कि वैकल्पिक आधुनिकता की बजाय हम गैर यूरोपीय समाज के अतीत और वर्तमान के प्रसंग में आधुनिकता के विकल्प की ही बात क्यों करना करें। डेविड लोरेंजन का कहना है, आधुनिकता स्वयं ही काफी उलझी हुई और अस्पष्ट अवधारणा है। आधुनिकता वर्णनात्मक है या नियामक? वास्तव में क्या इससे आधुनिक संसार का सब कुछ सम्मिलित है या यह आधुनिक जगत के उन मुख्य गुणों की ओर ही संकेत करने वाली अवधारणा है जो आधुनिकता के भाव को नियामक और तौर पर परिभाषित करते हैं? आधुनिकता की सर्वग्राही अवधारणा स्वीकार कर लेने पर तो सब कुछ को जिसका अनुभव और उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं आधुनिकता का एक आयाम या परिणाम ही मानना होगा। टूथब्रश से लेकर एटम बम तक, फासिज्म से लेकर लिबरल डेमोक्रेसी और साम्यवाद तक, पिकासो से लेकर सुपरमैन कॉमिक्स तक, अली अकबर खान से लेकर हिंदी फिल्म संगीत तक, हिंदुत्व से लेकर धर्म निरपेक्ष अनीश्वरवाद तक, अलकायदा से लेकर अमेरिकी साम्राज्यवाद तक, शहरी छिटपुट हिंसा से लेकर अमेनेस्टी इंटरनेशनल तक, सवाल यह है कि हम आधुनिकता के यूरोपीय इतिहास में निबद्ध प्रत्यय को ही आधुनिकता का एकमात्र प्रत्यय क्यों माने बैठे हैं? यह यूरोप की विशिष्ट विडंबना ही थी कि वहां पुनर्जागरण और प्रबोधन किस हद तक तुरंत अनुभूत अतीत इमेजिएटिव पास्ट से विच्छेद के साथ जुड़ गया। चर्च के ऐसे दमनकारी हिंसक वर्चस्व के कारण राजधानियों से लेकर दूर दराज के गांवों से सेकुलर के लिए कोई स्पेस ही नहीं बचा। जैक गुडी समाज के पुनर्जन्मों के लिए यूरोपीय आरंभिक आधुनिकता को चर्च नियंत्रित मीडिएवल पांडित्य के स्थान पर सुदूर अतीत के चिंतन से नाता जोड़ना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद इस इमेजिएटिव पास्ट के प्रति वैसी हिकारत यूरोपीय मानस का वैसा संस्कार कभी नहीं बनी जैसा संस्कार जैसी आत्मघृणा औपनिवेशिक आधुनिकता के प्रोजेक्ट का अनिवार्य हिस्सा बनकर गैर यूरोपीय समाजों में लाई गई इस संस्कार के उपजे संवेदना विच्छेद को अकथ कहानी प्रेम की भारत ही नहीं सभी औपनिवेशीकृत समाजों के प्रमुखतम समस्या मानती है। सवाल फिर वही है, यूरोप में जैसे संघर्ष था उसे आधुनिकता का निर्णायक नियामक तत्व माना ही क्यों जाए। यूर्गन हाबरमास द्वारा वर्णित बुर्जुआ पब्लिक स्पीयर से काफी हाउस की संस्था काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन उसे ही पब्लिक स्पीयर लोकवृत्त का नियामक तत्व मानना और कॉफी हाउस जिन समाजों में नहीं थे वहां लोकवृत्त की संभावना से ही इनकार कर देना संभवतः उचित नहीं होगा। निकट अतीत के टूटन की हद तक जानने वाले संघर्ष यूरोपीय आधुनिकता की विशिष्ट ऐतिहासिक स्थिति की सूचक मात्र है। उसे आधुनिकता मात्र की परिभाषा का अनिवार्य घटक या नियामक तत्व मानना भ्रामक है। ऐसा संघर्ष यूरोपेतर आधुनिकताओं के विकास क्रम के मिल से जा सकता है, नहीं मिल सकता। यहाँ नामवर जी द्वारा किया गया पुनर्नवता शब्द का प्रयोग याद आता है। उन्होंने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध का छंद बखानते हुए कुमार संभव के पांचवें सर्ग के अंतिम श्लोक की पंक्ति क्लेश फलेन ही पुनर्नवता विद्यते को याद करते हुए 1993 में लिखा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी काशी के पंडितों की उस लुप्त प्राय परंपरा में अन्यतम है जिसे रामावतार शर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल सांकृत्यायन जैसे तेजस्वी पंडितों ने 20वीं सदी तक जिलाए रखा और जिससे इन्हीं हिंदी चिंतन सृजन को पुनर्नवता प्राप्त हुई। जिसे हम आज आधुनिकता कहते हैं वह इसी पुनर्नवता का दूसरा नाम है और आश्चर्य नहीं कि इसमें किसी किसी को तथा कथित उत्तर आधुनिकता का भी पूर्वाभास मिल जाए। वास्तविक आधुनिकता किसी भी परंपरा की पुनर्नवता ही है। हर आधुनिकता की अपनी परंपरा और हर परंपरा में आधुनिकता की संभावना। इस पुनर्नवता के विशिष्ट ऐतिहासिक पलों की पहचान और विभिन्न परंपराओं के ऐसे पलों की परस्पर तुलना जरूरी है या नहीं, ऐसी तुलना न तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों की अपेक्षा कर सकती है और न ही समाज के सांस्कृतिक, वैचारिक जीवन और उसके लिखित मौखिक साक्ष्यों की। इस तरह देखने पर साफ दिखता है कि कबीर के समय में केवल उनके समाज में ही नहीं और समाजों में भी विश्व भर से कुछ तो बदल रहा है। साथ ही इस तरह देखने पर भारत ही नहीं दुनिया भर के इतिहास में एक तो विश्व व्यवस्था को केवल 200 साल पुरानी मानने की निराधारता स्पष्ट हो जाती है, दूसरे पिछली सहस्राब्दी सचमुच देश भाषाओं की सहस्राब्दी वर्नाक्यूलर मिलेनियम लगती है। विभिन्न परंपराओं में पुनर्नवता या आधुनिकता की ऐतिहासिक प्रक्रिया से व्यापार का विशिष्ट संबंध भी समझ आने लगता है। बात केवल यही नहीं रह जाती है, भारतीय व्यापार ईसा के पहले की सदियों में भी दुनिया भर से जुड़ा हुआ था, वह तो था ही। यूरोप और ईसाइयत के इतिहास को जानकर इस उपस्थिति के प्रति सचेत भी रहे निकोलस कंजात जाकिस के उपन्यास द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट में मेरी मैगडलीन के ग्राहकों में एक भारतीय व्यापारी भी है। लेकिन असली बात यह है कि कबीर के समय में या उनके कुछ सदी पहले और पीछे व्यापार के प्रसार की विशिष्टता और उस प्रसार की सामाजिक सांस्कृतिक परिणतियों क्या थी। कबीर के समय की रचनाशीलता और चिंतनशीलता में कोई नया तत्व प्रस्फुटित हो रहा था या नहीं, परंपरा से ही उपलब्ध हो रहे हो तब भी ऐसे तत्वों का पुनरेखांकन और व्यापक समाज में उसका स्वीकार ऐतिहासिक जिज्ञासा के लिए महत्वपूर्ण तो है ही। ऐसे स्वीकार का कोई गहरा या उथला संबंध व्यापार के प्रसार से था या नहीं, इन प्रश्नों को यदि भारतीय इतिहास के संदर्भ में उठाया जाए और जो कुछ भारत में हो रहा था उसकी तुलना अन्य समाजों और परंपराओं से की जाए तो कैसे नतीजे हासिल हो सकते हैं। अकत कहानी प्रेम की यही जिज्ञासा करती है कि और नतीजे पाठकों के सामने ही भारत और चीन जैसे समाजों को व्यापक औद्योगिकरण से वंचित आप भले ही कह लें आधुनिकता से वंचित कहना बेईमानी होगी। समस्या यह है कि इतिहास लेखन की वस्तुनिष्ठता पहले और औद्योगिकरण के बाद में आया। यह भी याद रखना चाहिए कि परंपरा का रूपांतरण आधुनिकीकरण पुनर्नवता और बात है सामाजिक चेतना और बौद्धिक चित्त में सामाजिक चेतना और बौद्धिक चित्त में संवेदना विच्छेद उत्पन्न हो जाना और बात है सांस्कृतिक स्मृति संवेदना विच्छेद का उत्पन्न होना औपनिवेशिक आधुनिकता की स्वाभाविक परिणति है। किसी परंपरा को देशज आधुनिकता के जरिए टटोलने में कोई हर्ज नहीं, इसलिए औपनिवेशिक आधुनिकता द्वारा देशज आधुनिकता अर्थात परंपरा की पुनर्नवता से उत्पन्न किए गए संवेदना विच्छेद का विश्लेषण करना जरूरी है। जहां तक डेविड लेवरिंजन द्वारा उठाए गए आधुनिकता के सर्वग्राही अवधारणा के सवाल का ताल्लुक है, मेरी समझ से आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता दोनों के प्रसंग में हमें ऐतिहासिक स्थिति और संवेदना तथा मूल्य बोध के बीच के अंतर और अंतः संबंध को ध्यान रखना चाहिए। इसी ध्यान के साथ मैंने लिखा, आधुनिकता मध्यकालीनता से अलग होती है। व्यक्ति समाज और ब्राह्मण के परस्पर संबंधों की नई समझ के आधार पर मेनिका हार्स्टमान ने बिल्कुल ठीक पहचाना। आधुनिकता के संरचनात्मक नियामक तत्व के तौर पर मैं राजवृत्त और निजवृत्त के साथ एक नए सामाजिक अवकाश सोशल स्पेस लेकर पब्लिक स्फीयर के विकास पर जोर देना चाहता हूँ। फ्रेंचेस्का ओरिसिनी ने इस पहचान के साथ ही किताब की इस सीमा की ओर बिल्कुल ठीक संकेत किया है कि लोकवृत्त निरूपण में किताब फारसी स्रोतों का मूल रूप में उपयोग नहीं कर पाती। दाबिस्ताए मजाहिब को किताब मूल और अंग्रेजी अनुवाद की तुलना करते हुए जरूर पड़ती है, लेकिन मित्रों की सहायता से। यह लेखक फारसी अब तक तो नहीं जानता, लेकिन जल्दी ही फ्रेंचेस्का की यह शिकायत दूर होगी इंशाअल्लाह। खैर, बात यह है कि आधुनिकता को यदि हम पुनर्नवता या उसकी संभावना के रूप में देखें तो व्यक्ति समाज और ब्रह्मांड के परस्पर संबंधों की नई समझ को ऐसी समझ के व्यापक स्वीकार को आधुनिकता के नियामक तत्व के रूप में रेखांकित किया जा सकता है। फिर अलकायदा और अमेरिकी साम्राज्यवाद सरीखी परिघटनाएं आधुनिकता की नियामक पहचान नहीं, आधुनिकता के इतिहास की ऐसी परिघटनाएं प्रतीत होंगी जो आधुनिकता के नियामक तत्वों के सामने चुनौती की तरह खड़ी हैं। पहले यूरोप में जन्मी फिर साम्राज्यवाद के सिविलाइजिंग मिशन के तहत वायरस की तरह सारी दुनिया में फैल गई आधुनिकता के बरक्स एक दूसरे के समानांतर विकसित हो रही आरंभिक आधुनिकता की बात पिछले कुछ वर्षों से अनेक इतिहासकार कर रहे हैं। इसी के साथ विश्व व्यवस्था के इतिहास के प्रश्न भी जुड़े हुए हैं। इन बातों की थोड़ी सी चर्चा मैंने किताब के दूसरे अध्याय में कर दी है। समानांतर विकसित आधुनिकताओं की चर्चा के क्रम में मैक्सिकन विद्वान एनरिक डसल ट्रांस मॉडर्निटी शब्द का प्रयोग करते हैं। उनका कहना वही है, आधुनिकता से जिन मूल्यों और प्रक्रियाओं का बोध होता है वे यूरोप तक ही सीमित नहीं थी। भारत, चीन, लैटिन अमेरिका में भी वैसे वैचारिक और सामाजिक परिवर्तन आ रहे थे। मैं भी आधुनिकता को कुछ मूल्यों और प्रक्रियाओं के ही आधार पर पहचानना चाहता हूँ। विभिन्न परंपराओं और आधुनिकताओं के बीच संवाद के आधार पर एक नया यूनिवर्सल विकसित हो सकता है, होना भी चाहिए। यह बोध मेरे मन में कम से कम 10 साल से तो स्पष्ट है ही। विचार का अनंत में मैंने लिखा कि जरूरत इस बात की है कि मनुष्य की सार्वभौम आकांक्षाओं से अपने विशिष्ट संदर्भों की बाधाओं के प्रसंग में विकसित होते बौद्धिक उपक्रमों और विमर्शों के बीच संवाद हो। ऐसा संवाद मानवीय स्थिति की समग्रता का जो बोध उत्पन्न करेगा वह वैचारिक धरातल पर बहुवचनात्मक और व्यवहारिक धरातल पर जनतांत्रिक होगा। समग्रता परक बहुवचनात्मक संवाद की संभावना में आस्था मेरे मन में पिछले 10 साल से प्राप्त दुनिया के कई समाजों के अनुभव अध्ययन के कारण दृढ़तर हुई और साथ ही दृढ़तर हुआ है नैतिक सापेक्षवाद पर आधारित मान्यताओं और हर्मेन्यूटिक्स ऑफ सस्पिशन से प्रेरित पाठ विधियों के प्रति सस्पिशन। पुस्तक के पहले संस्करण की भूमिका में भी मैंने कहा, विचार का अनंत में जो कहा गया था वह यह सप्राण दिखाया गया है। श्री वागी शुक्ल का कहना है कि पुस्तक के शुरू में ही स्मृति नवलदास के बातों पर मुझे कुछ और ध्यान देना चाहिए था और उत्तर आधुनिकता पर कटाक्ष नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि नवलदास और दरीदा की बातों से ऐसी कोई खाई नहीं जिससे पार न किया जा सके, खाई है तो मानसिकताओं की। मदन सोनी ने भी उत्तर आधुनिकता पर किए गए कटाक्षों को अपनी असुविधा जाहिर की। ये कटाक्ष किसी हद तक तो हिंदी में उत्तर आधुनिकता के स्वयंभू सुधी विचारकों के अंधाधुंध अज्ञान की ओर थे, लेकिन वह बात और है। वागी शुक्ल और मदन सोनी उत्तर आधुनिक चिंतन के गहरे जानकार हैं, समस्याओं पर गंभीरता से विचार करते हैं। जो ऐतराज वे दर्ज कर रहे हैं उस पर मेरा उत्तर यह है कि उत्तर आधुनिक कंडीशन और उत्तर आधुनिकवाद में फर्क करना जरूरी है। कंडीशन ऐतिहासिक सच्चाई है, लेकिन विकास क्रम बल्कि कुछ पूर्व ग्रहों के ही विस्तार पर आधारित है। चूंकि यूरोपियन आधुनिकता निकट अतीत के साथ विच्छेद या संघर्ष से जन्मी है, इसलिए हर आधुनिकता ऐसी ही होगी या फिर अन्य आधुनिकताओं की परंपरा की पुनर्नवता का अस्तित्व ही नहीं। यह यूरो केंद्रीय पूर्वग्रह ही है। यह पूर्वग्रह की परिणतियों का बोधकर्ता करना बेहद जरूरी है और अन्य बातों के साथ इस काम के लिए भी देशज आधुनिकता की अवधारणा मुझे अपरिहार्य लगती है। जहां तक बात है नवलदास की, जो इस संस्कृति और स्मृति में स्थित हैं, वह उत्तर आधुनिकता की नहीं यूरोपियन आधुनिकता के समांतर विकसित होती रही आधुनिकता की संस्कृति और स्मृति मानसिकताओं के फर्क या उसके अभाव को इतिहास क्रम की उपेक्षा करके समझना मुश्किल होगा। खास तौर पे औपनिवेशिक ज्ञानकांड की जकड़ में आए समाज के प्रसंग में, इन समाज की बात ही छोड़ दें तो भी उत्तर आधुनिकतावाद जिस मानसिकता की सूचना देता है वह स्वयं यूरोपियन आधुनिकता की अगली स्टेज ही सूचित करती है। गैर यूरोप इससे भी हाशिए पर है। आधुनिकता में तिरस्कार के साथ तो उत्तर आधुनिकता में दया भाव के साथ। इसके विपरीत नवलदास जिस देशज आधुनिकता को वाणी दे रहे हैं वह यूरोपियन आधुनिकता की न अनुगामिनी है और न ही विरोधिनी, वह उसके समांतर है। वह यूरोपीय आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता के बाहर है। नवलदास के साथ हुई मेरी बातचीत इस तरह से खुद के साथ बरसों से चल रही बातचीत का रूपक भी है और इस सबक की याद दिहानी भी कि अंग्रेजी और उसके अनुकरण तक सीमित रहने वाली दुनिया के बाहर भी एक बौद्धिक दुनिया है जिसे उपदेश देना बेहतर है उसके साथ बातचीत करना। कबीर लूथर के समांतर थे, न कि विरोधी न अनुयायी। आरंभिक यूरोपीय अध्येताओं को जरूर कबीर के संदर्भ में लूथर बार बार याद आते थे। इनमें से एक W.W. हंटर ने कबीर के बारे में इंडियन लूथर शीर्षक से लिखा भी था। इंडियन लूथर की खोज करने में कोई हर्ज भी नहीं, बशर्ते साथ में यूरोपियन कबीर की खोज भी जारी रहे। बॉन की जिस कॉन्फ्रेंस का जिक्र पहले किया जा चुका है उसमें मैंने जो पर्चा पढ़ा उसका शीर्षक यही था कि हु वाज यूरोपियन कबीर। समस्या यह है कि नवलदास तो यूरोपियन आधुनिकता से संवाद करना चाहते हैं, लेकिन यूरोपियन आधुनिकता उन्हें सुधारना चाहती है। संवाद हो तो सुधारेंगे दोनों, एक दूसरे से सीखेंगे एवं संवाद हो तो दोनों सुधरेंगे। लेकिन औपनिवेशिक आधुनिकता तो सुधार की वन वे स्ट्रीट ही देख पाती है, दूसरी ओर उत्तर आधुनिकता नवलदास के इतिहास में जमा देना चाहती है। यह यूरोपियन आधुनिकता से ही उपजे आज प्रचलित उस यूरो केंद्रित उत्तर आधुनिक विमर्श का यह स्वाभाविक परिणाम है जो डिसेंटरिंग की कला भी सेंटर से ही सीखता है और वहीं से अपने बौद्धिक उपकरण लेता है। उत्तर आधुनिक स्थिति की वास्तव में प्रामाणिक व्याख्या करने में सक्षम और इस अर्थ में वास्तविक तथा अप्रामाणिक उत्तर आधुनिक विमर्श का विकास वास्तविक संवाद से ही संभव है, कृपा भाव से नहीं। ऐसे संवाद में अंतरों के जरूरी बोध के साथ ही न्यूनतम मानवीय मूल्यों के सार्वभौमिकता का उतना ही जरूरी आग्रह भी स्पष्ट रूप से निहित होगा। भक्ति के लोकवृत्त की अवधारणा अनेक मित्रों को अभूतपूर्व और अत्यंत विचारोत्तेजक लगी है। मोनिका हार्स्टमान ने अकथ कहानी प्रेम की द्वारा आरंभिक आधुनिकता की पहचान में इसकी केंद्रीयता को उचित ही रेखांकित किया है। मैं तो भक्ति के लोकवृत्त पर काम जारी रखने वाला हूँ। आशा है कि अन्य मित्रों का उत्साह भी कुछ रंग लाएगा। इस विषय में स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज लंदन के फ्रेंचिस्का और ओरिसिनी और बीएचयू के राजकुमार और संजय के उत्साह का उल्लेख ऊपर ही हो चुका है। भक्ति के लोकवृत्त के बनने और विकसित होने पर व्यापारियों और दस्तकारों की भूमिका के रेखांकन के प्रसंग में मोनिका जी ने बिल्कुल ठीक याद दिलाया कि इन वर्गों की वास्तविक भूमिका, खासकर कबीर के बनारस के परिवेश में इनकी भूमिका का कोई खास अनुसंधान आज तक हुआ नहीं है। आगे उन्होंने बनियों के लोक प्रचलित स्टीरियोटाइप के बावजूद भक्ति के सोशल नेटवर्क में उनकी और अन्य सामाजिक समूहों पठान, योगी, राजपूत और अन्यों की उपस्थिति को भी रेखांकित किया है। मोनिका जी के अनुसार चूंकि पब्लिक स्फीयर लोकवृत्त निजी और शासकीय अवकाशों के बीच का अवकाश है, इसलिए यह भी खोज जाना चाहिए कि परंपरा पर प्रश्न उठाने वाले आधुनिक के बीच होने वाले संघर्षों के प्रति पंचायत के रवैया कैसा रहता था। अकथ कहानी प्रेम की के छपने के कुछ दिन बाद खाप पंचायत की नादेशाही के अनेक समाचार आए थे। कुछ लोगों ने कहना शुरू किया, यह है आपकी देशज आधुनिकता। निवेदन फिर से वही खाप पंचायतों के आज के व्यवहारों के आधार पर कबीर के समय में उनके व्यवहार के बारे में निष्कर्ष निकालने के कालक्रम दोष हैं। दूसरी बात, पंचायतें तरह तरह की होती हैं, गांव, जाति, पेशे, बिरादरी और खाप की। किसकी क्या भूमिका और प्रसंग विशेष में क्या रवैया होता था, इस विषय में कोई सामान्यीकरण करने के पहले कम से कम 10-5 पंचायतों के इतिहासों, फैसलों और लोक जीवन में उनकी वास्तविक भूमिकाओं का प्रामाणिक अध्ययन कर लेना चाहिए। इस लिहाज से भक्ति के लोकवृत्त में पंचायतों की भूमिका के बारे में मोनिका जी का सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी तरह फ्रेंचेस्का ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण विचारणीय सवाल उठाया, किताब कबीर की संवेदना और सामाजिक आलोचना को सामंती विशेषाधिकारों के विरुद्ध व्यापारियों और दस्तकारों की न्यायसंगत व्यवहारता फेयर प्ले की मांग से जोड़ती है। फ्रेंचेस्का का कहना है, कम से कम उत्तर भारत में तो व्यापारी समुदाय आज तक भी किसी तरह के रेडिकलिज्म या न्याय संगत व्यवहार के आग्रह में किए लिए विख्यात नहीं है। ऐसी स्थिति में यह कैसे कहा जा सकता है कि आध्यात्मिक धरातल पर फेयर प्ले की मांग करने वाली कबीर की आवाज व्यापारियों और दस्तकारों की आकांक्षाओं को वाणी दे रही थी। भक्ति के लोकवृत्त को समझने की दृष्टि से यह सवाल उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पंचायतों की भूमिका का सवाल। पंचायतों पर तो नहीं, लेकिन इस सवाल पर थोड़ी सी ही सही बात तो किताब में की गई। बनियों के प्रख्यात रूढ़िवाद की ख्याति समुद्र यात्रा से ही सही बात तो किताब में की गई। निषेध को काटते मारवाड़ी बनियों के रूस के अस्त्राखान और मिस्र के काहिरा नगर जा पहुंचने की वास्तविकता से कैसे टकराती है, यह बताया गया। वैसे भी औपनिवेशिक ज्ञानकारों द्वारा डरपोक और घर घुसेरे बताए गए बनिए लोक आख्यानों में सुरक्षित स्मृतियों के अनुसार 7 समुद्र पार की दिसावर तक व्यापार करने का साहस किया करते थे। बनारसी दास के अर्थ कथानक के एक अंश पर बात करती हुई किताब कयास लगाती है कि कंजूस बनिए का स्टीरियोटाइप किन परिस्थितियों के कारण बना होगा, लेकिन निसंदेह है कि कंजूस बनिए का भक्ति के लोकवृत्त पर विस्तृत विचार करने के क्रम में व्यापारियों और दस्तकारों के सामाजिक रुझानों के बारे में और खोज तो करनी ही होगी। उपन्यासकार रविंद्र वर्मा, जनसत्ता, 11 जुलाई 2010 के अनुसार लोकवृत्त की अवधारणा का पाठ अपने मूल अभिप्राय से लोक धर्म से अलग नहीं लगता। सिर्फ लोक धर्म में नायकत्व दस्तकारों और व्यापारियों के हाथों से फिसलकर जनसाधारण के हाथों में आ जाता है। उनका यह भी कहना है कि पुरुषोत्तम अग्रवाल लोक धर्म और संगठित धर्म में फर्क नहीं कर पाते। वैसे पुस्तक का एक पूरा अध्याय धर्म चर्चा को ही समर्पित है। लोक धर्म और संगठित धर्म के फर्क के साथ ही यह धर्म भी ध्यान रखते हुए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल लोक धर्म का प्रयोग नियामक नॉर्मेटिव आशय से करते हैं तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव आशय से। जहां तक नायकत्व के फिसल जाने की बात है, कबीर के समय दस्तकारों और व्यापारियों से अलग जनसाधारण किसान ही थे और कबीर पंथ में भक्ति के व्यापक लोकवृत्त में किसानों ने नेतृत्व के ऐतिहासिक प्रमाण मुझे मिले नहीं हैं। ध्यान दें, नेतृत्व ही कहाँ रहा, उपस्थिति नहीं। यों भी कबीर और उनके सरीखे अन्य लोग अपने वक्त में नहीं, बहुत बाद में हाशिए की आवाज में बदल गए, यह मैं किताब में अनेक प्रमाणों के साथ दिखा ही चुका हूँ। निर्गुण सगुण के स्थान पर भक्ति काव्य का वर्गीकरण काव्योक्त शास्त्रोक्त में करने के प्रस्ताव ने भी मित्रों का ध्यान आकर्षित किया है। डेविड लोरेंजन ने इस वर्गीकरण को अपनी कठिनाइयों और संभावित विघूचनों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए और अपने द्वारा प्रस्तावित वर्णधर्मी अवर्णधर्मी वर्गीकरण का भी उल्लेख करते हुए प्रस्ताव किया है कि दूसरे शब्दों में संभवतः यह बेहतर होगा कि इनमें से प्रत्येक भिन्नता की व्याख्या स्वतंत्र रूप से की जाए और सभी कवियों के समानांतर श्रेणियों और काव्युक्त वर्ग में रखा जाए। इसी तरह तुलसीदास के काव्यों को या कम से कम कुछ भजनों को सगुणी वर्णधर्मी और काव्युक्त वर्ग में और मीरा के काव्य को सगुणी अवर्णधर्मी और काव्युक्त वर्ग में रखा जा सकता है। अंजनी श्रीवास्तव ने भी काव्योक्त शास्त्रोक्त की अस्पष्टता को रेखांकित किया है। हालांकि प्रत्येक भिन्नता की व्याख्या स्वतंत्र रूप से करने की बजाय उनका सुझाव सीधे सा प्राचीन भागवत धर्म को शास्त्रोक्त और मध्यकालीन भक्ति काव्य को काव्योक्त कहा जाए, दोनों ही सुझाव विचारणीय है। मैं तो विचार करूंगा ही, आशा है अन्य अध्येता भी इन पर ध्यान देंगे। फिलहाल संतोष इस बात का तो है ही कि काव्योक्त शास्त्रोक्त के प्रस्ताव ने निर्गुण सगुण के प्रचलित विभाजन के इतिहास विरुद्ध सपाटपन की ओर लोगों का ध्यान खींचा है। यह भी संतोष की बात है कि कबीर की भक्ति संवेदना की चर्चा में नारद भक्ति सूत्रों का रेखांकन और भक्ति माने भागीदारी का प्रस्ताव अधिकांश पाठकों और विद्वानों को विचारोत्तेजक लगा। इस प्रस्ताव का स्रोत वही है जो पूरी किताब में अंतर्निहित पद्धति का औपनिवेशिक आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता के अहंकार जनित अज्ञान के कारण बहुत से लोग इस पर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं समझते कि कबीर के अपने समकालीन या कुछ पीछे के लोग उनके बारे में क्या कहते हैं। कबीर रामानंद संबंध के प्रसंग में किताब इस अहंकार और अज्ञान की परिणीतियों का जो आख्यान प्रस्तुत करती है, रोचक बात है कि वह लगभग सभी पाठकों और समीक्षकों को जासूसी कहानी जैसा लगता है। यहाँ यह आख्यान सबसे पहले छपा था उस संकलन के संपादक इतिहास सौरभ दुबे से लेकर युवा समीक्षक वेद प्रकाश तक को कबीर के अपने समकालीन और तुरंत बाद के लोगों की आवाज को ध्यान से सुनने के प्रसंग में 18 जुलाई सन 2010 को मेरे साथ एक निजी बातचीत में नामवर जी ने जैसी की पंक्ति प्रसिद्ध पंक्ति ना नारद तब रोई पुकारा एक जुलाहे सो मैं हारा के बारे में कहा कि यह जायसी बता रहे हैं कि कबीर नारदी भक्ति के इतने बड़े साधक हैं कि इस साधना में स्वयं नारद भी उनसे पीछे छूट गए हैं। नामवर जी की यह बात कबीर जायसी के संदर्भ में नहीं, उन अन्य कवियों के संदर्भ में भी उनके परस्पर संवाद और स्मरण को समझने की उचित विधि का एक बार फिर रेखांकन करती है। पुस्तक के प्रकाशन के बाद जो मुद्दे उठे उन पर कुछ टिप्पणियां यहाँ की गई हैं, कुछ शायद फिर कभी की जाएं। जहाँ तक पुस्तक के बारे का सवाल है, पुस्तक के पाठ का सवाल है, यह जस का तस है। हाँ, कुछ शब्द गलत छप गए थे, कुछ छूट गए थे, जो प्रूफ कुछ और सावधानी से पढ़े गए हैं। प्रेमदास उत्तराधा के 1705 ईस्वी वाले गुटके के संकलित कबीर बाणी का पाठ दादू जी के प्रत्यक्ष शिष्य और प्रेमदास के दादा गुरु बनवारी दास जी ने तैयार किया था। यह बात पहले संस्करण के चौथे अध्याय में तो स्पष्ट थी ही, इस संस्करण के पहले अध्याय में भी इसे माफ कर दिया गया। रचना चयन के दो पद और जोड़ दिए गए हैं। एक तो जीव जल छोड़ बाहर भइयो मीना, और दूसरा काग उड़ावत मेरी बाह पिरानी। और अंत में यही कि इस किताब के लिखने के क्रम में मैं बहुत कुछ सीखा, यो कहना बेहतर होगा कि खासकर पिछले 10 साल से जो सीखता रहा हूँ उसी की अभिव्यक्ति किताब में निहित चिंताओं और प्रस्तुत किए गए तर्कों में की गई है। यह धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि अतियों के प्रलोभन से मुक्ति पाने की, निरंतर मधि के वास करने की साधना को कबीर जैसे साधक इतना कठिन क्यों बताते हैं, अनल पक्षी को इस साधना का रूपक क्यों बनाते हैं। इस अर्थ में अकथ कहानी प्रेम की अनल के इस मधि निरंतर वास को घट भीतर खोजने के आयास का दस्तावेक्ष भी है। 16 अगस्त 2010 पुरुषोत्तम अग्रवाल।